नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
तो आज पढ़ रहे हैं हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण से पांचवा स्कंद अध्याय पांच भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश. वेर इज द डिवोटी हू ट्रांसलेट्स राघव.
हंसे गुरो मई भक्त्या अनुवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च सर्वत्र जन्तो व्यसना अवगत्या जिज्ञासया तपसा इहान्वृत्त्या हंसे गुरो मयि भक्त्यानुवृत्त्या हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तो व्यसना अवज्ञात् सर्वत्र जन्तो व्यसना अवज्ञात् जिज्ञासया तपसे हानिवृत्त्या जिज्ञासया तपसे इहानिवृत्त्या हंसे गुरो मयि भक्त्यानुवृत्त्या हंसे गुरो मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तो व्यसनावगत्या सर्वत्र जन्तो व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसैहानिवृत्त्या जिज्ञासया तपसैहानिवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तो व्यसनानुवृत्त्या जिज्ञासया तपसैहानिवृत्त्या हंसे गुरो मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया दर्शनावगत्या
माता जी
हंसे
परमहंस अथवा आत्म तत्वज्ञ गुरु गुरु में मई मुझ भगवान में भक्तया भक्ति के द्वारा अनुवृत्त्या पालन करके वितृष्णया इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति के द्वारा द्वंद्व संसार की द्वैतता का तितिक्षया सहिष्णुता से च भी सर्वत्र सभी जगह जंतु जीवात्मा का व्यसना जीवन की क्लेशमय दशा अवगत्या समझकर जानकर जिज्ञासया सत्य के संबंध में पूछना पूछताछ द्वारा तपसा तपस्या से यहां निवृत्त्या इंद्रिय तृप्ति के प्रयास को त्यागने से। तो इसमें चार श्लोक टोटल हैं, यहां पर बोर्ड पर एक श्लोक लिखा गया है और तीन श्लोक मैं पढ़ लेता हूं। मत कर्म भी मत कथया च नित्यम मत देव संगात गुण कीर्तनाम नाम में निर्वैर साम्यो अपसे निर्वैर साम्योपशमेन पुत्रा जिहा सया देह गेहात्म बुद्धे अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्मा अभिजयेन सम सग्रह सश्रद्धया ब्रह्मचरणेन सस्वत् असंप्रमादेन जमेन वाचाम सर्वत्र मदभाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजतेन योगेन दित्त उदम सत्वयुक्तो लिंगम लिंगम व्यपोहेत कुशलो अमाख्यम। अनुवाद। हे पुत्रों, तुम्हें सिद्ध गुरु अथवा अर्थात परमहंस को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार तुम मुझ श्री भगवान पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम रखो। तुम्हें इंद्रिय तृप्ति से घृणा करनी चाहिए तथा ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के समान आनंद तथा पीड़ा की द्वैतता को सहना चाहिए। उन जो आत्माओं की कष्टमय दशा को जो स्वर्ग में भी दुखी रहती है समझने का प्रयास करो, सत्य का अन्वेषण करो, फिर भक्ति के लिए समस्त प्रकार की तपस्या करो। इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्नों का परित्याग करके ईश्वर की भक्ति करो, श्री भगवान की कथा का श्रवण करो और सदैव भक्तों की संगति करो, ईश्वर का कीर्तन और गुणगान करो और सबों को आध्यात्मिक स्तर पर समभाव से देखो। शत्रुता त्याग कर क्रोध तथा शोक का दमन करो। निज को देह तथा घर न मानते हुए शास्त्रों का अध्ययन करो, एकांत वास करो और प्राणवायु श्वास मन तथा इंद्रियों को पूर्णतया वश में करने का प्रयास करो। वैदिक साहित्य अर्थात शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धावान बनो और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। अपने कर्तव्यों को करते हुए वृथा बातें करने से बचो। सदैव श्री भगवान का चिंतन करते हुए अधिकारी से ज्ञान प्राप्त करो। इस प्रकार उत्साह एवं धैर्य पूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते रहने से तुम्हारा अहंकार जाता रहेगा। तात्पर्य, इन चार श्लोकों में ऋषभदेव अपने पुत्रों को बताते हैं कि वे किस प्रकार अहंकार तथा संसारी बद्ध जीवन से उत्पन्न झूठी पहचान से मुक्त हो सकते हैं। उपर्युक्त विधि से अभ्यास करने पर मुक्त हुआ जा सकता है। इन उपदिष्ट विधियों से भौतिक शरीर लिंग विपोहेत का परित्याग करके अपने मूल आत्मदेह में स्थित हुआ जा सकता है, किंतु सर्वप्रथम गुरु बनाना पड़ता है। श्री रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में इसका समर्थन किया है। श्री गुरु पदाश्रय, भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए गुरु के पास जाना होता है। तद विज्ञानार्थ सम गुरुम एवाविगच्छेत, गुरु से प्रश्न करके तथा सेवा करके आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हुआ जा सकता है। जब कोई भक्ति में लग जाता है तो व्यक्तिगत सुविधा खाने सोने तथा पहनने का आकर्षण सहज ही कम हो जाता है। भक्त की संगति करने से आध्यात्मिक स्तर बना रहता है। मददेव संगा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे अनेक धर्म हैं जिनमें विभिन्न देवताओं की पूजा की जाती है, किंतु यहाँ संगात का अर्थ ऐसी संगति है जो श्री कृष्ण को ही उपासना उपास्य अर्चा विग्रह रूप में स्वीकारती है। द्वंद्वात तिक्षा भी महत्वपूर्ण है। जब तक प्राणी इस संसार में रहता है तब तक इस देह में आनंद तथा कष्ट मिलता रहता है। जैसा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, तांत तिक्षस्व भारत, मनुष्य को इस संसार में सुख तथा दुख को सहना सीखना होता है। उसे चाहिए कि वह अपने परिवार से विरक्त होकर ब्रह्मचर्य पालन करे। शास्त्रों के अनुसार अपनी पत्नी के साथ संभोग करना भी ब्रह्मचर्य है, किंतु व्यभिचार वर्जित है, क्योंकि इससे आध्यात्मिक चेतना जाती रहती है। विज्ञान विराजित भी ऐसा ही महत्वपूर्ण शब्द है। प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक विधि से तथा विवेकपूर्ण रीति से किया जाना चाहिए। मनुष्य को सिद्ध जीव होना चाहिए, इस प्रकार वह भौतिक बंधन से छूट सकता है। जैसा कि श्री माधवाचार्य इंगित करते हैं, इन चारों अस्त्रों का सारांश यह है कि इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा न रखकर कार्य करते हुए ईश्वर की प्रिय सेवा में सदैव संलग्न रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुक्ति का स्वीकृत मार्ग भक्ति योग है। श्रील माधवाचार्य अध्यात्म से उद्धरण देते हैं, आत्मनो अवहितम कर्म बज इत्वान कर्मण कामस्य च परित्यागो निरेहित्याहुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि आत्मा के लाभ हेतु ही सारे कार्य करें और अन्य कार्यों का परित्याग कर दे। जब मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त होता है तो उसे निष्प्रिय कहते हैं। जीवात्मा कभी भी पूर्णतया निष्प्रिय नहीं हो सकता, किंतु जब वह आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का हित चिंतन नहीं करता तो निष्प्रिय कहलाता है। आध्यात्मिक ज्ञान ही ज्ञान विज्ञान समन्वितम है तथा ज्ञान तथा विज्ञान से पूर्णतया सज्जित होने पर मनुष्य पूर्ण होता है। ज्ञान का अर्थ है श्री भगवान विष्णु को ही परम जीव समझना। विज्ञान का अर्थ है संसार की अविद्या से छुटकारा दिलाने वाले कर्म। जैसा कि भगवत गीता 2:9:31 में कहा गया है, ज्ञानम परम गुह्यम् मे यद विज्ञान समन्वितम्। श्री भगवान का ज्ञान परम गुह्य है और जिस परम ज्ञान से उस भगवान को कोई समझता है उससे जीवों की मुक्ति होती है, ऐसा ही ज्ञान विज्ञान है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि 4:9 में इस प्रकार हुई है, जन्मा कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नयति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो मनुष्य जान लेता है वह देह को त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भूतैर्महद्भियैमा पुरो विभो निरमायसेते यदमो सुपुरुषम् भुक्ते गुणान् षोडशषोडशात्मकम् सोलम् कृषिष्टम् भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणवामि हरि प्रिये। भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाज, जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोग राम कथा सुनते आ रहे हैं, होलनेस। भक्ति सामृत महाराज से। कल रामनवमी भी है, मैं भी सोचा था कि थोड़ा राम कथा के विषय में बात करता। असीम जी से पूछा भी, मैं सोचा कि विश्वामित्र जी बक्सर से अयोध्या आए और राम लक्ष्मण को लेकर के पुनः बक्सर पहुंचे, वहां तक मैं सोचा था कथा करूंगा। तो असीम जी बोले कि ब्रजहरी प्रभु महाराज से पहले ही बोल दिए हैं तो आज वो क्लास देंगे। तो मैं कहा ठीक है, लेकिन आज पुनः सुबह में उन्होंने कहा कि नहीं आप बताइए, लेकिन मैं तैयारी कुछ नहीं किया था इसलिए सोचा कि चलो आज भागवत पर ही चला लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भगवान ऋषभदेव नाम को सार्थक कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था ऋषभ का अर्थ। ऋषभ ऋषति प्राप्नोति उत्कृष्ट गतिम इति ऋषभ, जो उच्च गति को प्राप्त कर लिया हो वह ऋषभ कहलाता है, या जो दूसरों को उच्च गति की प्राप्ति करा दे वह ऋषभ कहलाता है। तो भगवान ऋषभदेव अपने नाम के अनुसार यह कार्य कर रहे हैं इन उपदेशों के द्वारा। अपने पुत्रों के माध्यम से हम लोगों को उत्कृष्ट गति प्राप्त करने संबंधी ये ज्ञान दे रहे हैं। अब तक से दो श्लोकों में, इसके पहले के जो श्लोक हैं उन श्लोकों में मुख्य करके हृदय ग्रंथि का बात किया गया है। प्रथम श्लोक में अर्थात श्लोक आठ में हृदय ग्रंथि कैसे बनती है उसका वर्णन किया गया है, और नौवे में हृदय ग्रंथि के खुलने से मुक्ति होती है इसका वर्णन किया गया है। हृदय ग्रंथि मुक्ति का जो साधन है, हृदय ग्रंथि शैथिल्य एवं मुक्ति हेतु, एवं मतलब निश्चय ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। शैथिल्य मतलब शिथिलता, जब हृदय ग्रंथि में शिथिलता आएगी तब मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अब वह मुक्ति कैसे प्राप्त किया जाए उसका वर्णन इन चार श्लोकों में 25 प्रकार से भगवान ऋषभदेव बतलाए हैं। कैसे मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, उसका साधन क्या है, उस साधनों को बताए हैं इन चार श्लोकों में, 25 अलग अलग साधन बताए हैं। तो हमें नहीं लगता है कि आज ये चारों श्लोक का जस्टिफिकेशन हो पाएगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है केवल एक ही श्लोक पर मैं आज कथा कहूंगा, और तीन जो श्लोक है आगे भी भक्त लोग जो भी कथा कहेंगे उसका कह सकते हैं, बड़ा सारग्रहित श्लोक है सब। तो यह जो प्रथम यहां पर श्लोक है श्लोक संख्या 10, इसमें आठ साधन बताए गए हैं। प्रथम साधन है गुरु सुकृति, दूसरा साधन है भक्ति के द्वारा भगवत परायणता यानी भक्ति में तत्परता, तीसरा है तृष्णा का त्याग वितृष्णया, चौथा है द्वंद्व तदिच्छया, द्वंद को सहन करना। च शब्द कहा गया है, च का भी मतलब है लेकिन खोल करके नहीं कहा गया है। द्वंद्व तदिच्छया के साथ साथ जो द्वंद नहीं है उसको भी सहन करना। जैसे भक्ति का भी, जब भक्ति करने लगते हैं तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब भक्ति रूपी वृक्ष का सेवन होता है श्रवण कीर्तन के द्वारा, तो भक्ति के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अनर्थ वासनाएं भी आ जाती हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखा कौन। तो ये च शब्द उसके लिए है, उसको भी सहन करना चाहिए। और उसके बाद पांचवा है सर्वत्र जंतो व्यसना अवगत्या, यह विचार करना, यह समझना कि प्राणी किसी भी लोक में चला जाए वहां जाने पर भी उसे दुख झेलना पड़ेगा, सब जगह दुख ही दुख है, यह दुखालय है। तो यह पांचवा है। छठा है जिज्ञासया, तत्व जिज्ञासा करना। सातवां है तप, तपस्या करना। और आठवां है इहा निवृत्त्या, भौतिक सकाम कर्म का त्याग। तो ये आठ साधन बताए हैं कर्म ग्रंथि को, हृदय ग्रंथि को शिथिल करने का, लूज करने का। लूज करना बहुत जरूरी है। जैसे योगासन में, अष्टांग योग में जो प्राणायाम है, नहीं जम नियम आसन, जो आसन है, आसन का काम है शरीर को शिथिल करना, फ्लेक्सिबल बनाना। यह फ्लेक्सिबल होगा तब प्राणायाम के द्वारा जितने वायु के विकार हैं, जिसे अंग्रेजी में टॉक्सिन कहते हैं, उसको निकाला जा सकता है। तो हृदय ग्रंथि के टॉक्सिन को निकालने के लिए पहले उस नट को शिथिल करना पड़ेगा। हम लोगों को इसका अनुभव है, कभी कभी कुछ जोर से बंध जाता है, भले ही ये बीड बैग हो और इसमें जोर से बंध जाएगा है? तो छुड़ाने के लिए इसको धीरे धीरे शिथिल करते हैं, है ना? शिथिल करेंगे तब खुलेगा। तो वैसे ही क्या ध्यान कर रहे हो, क्या सो रहे हो, ध्यान करे सो रहे हो? हरे कृष्णा। तो हृदय ग्रंथि को शिथिल करना बहुत जरूरी है और ये साधन है। चलिए हम लोग इन आठ साधनों पर आज हम लोग विचार करेंगे इस कक्षा में। प्रथम साधन है गुरु सुकृति। क्वालिफिकेशन बताए हैं कैसा गुरु होना चाहिए, कैसा गुरु स्वीकार करें। प्रभुपाद जी कहते हैं आज चीटर और चीटर की कमी नहीं है, धोखा खाने वाले और धोखा देने वालों की कमी नहीं है। जैसे बाजार में आप खिलौना खरीद सकते हो, मिठाई खरीद सकते हो, सब्जी खरीद सकते हो, वैसे ही पैसा से आप गुरु खरीद सकते हो। गुरुओं कभी नहीं, गली गली में गुरु घूम रहे हैं, एडवर्टाइज भी बड़ा बड़ा करते हैं, बड़ा बड़ा एडवर्टाइज करते हैं। गुरुओं कमी नहीं है, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए। हंसे गुरु, हंस चार प्रकार के सन्यासी होते हैं, कुटिचक, बौद्धक, हंस और परमहंस। तुम भी यहां पर हंस का बात कह रहे हैं। हंस का गुण है जो कि नीर और क्षीर से क्षीर को का पान करे और नीर को छोड़ दे, दूध पी जाए और पानी छोड़ दे, वह हंस कहलाता है। जो व्यक्ति माया और भक्ति में भेद स्थापित करे वह हंस है, यानी माया को छोड़ करके भगवान का शरण ग्रहण करे वह हंस है। शास्त्र में गुरु के लक्षण बताए गए हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हम लोग प्रत्येक दिन गुरु आष्टक गाते हैं, उसमें गुरु का लक्षण बताया गया है। संसार बावा नरली ढलोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। कैसे गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए, कैसे गुरु के चरणों की प्रणति करनी चाहिए, गुरु का क्वालिफिकेशन क्या है, तो पहला क्वालिफिकेशन है कि जो बादल का काम करे। तीन प्रकार की अग्नि होती है, जठराग्नि, महदाग्नि और दवाग्नि। जंगल में लगने वाले आग को दवाग्नि कहते हैं। चारों तरफ से आग लग गया है और कोई असहाय हरिण वहां पर खड़ा है और चारों तरफ से आग आ रहा है, तो हरिण के बचने का और कोई तरीका नहीं है। वो हरे कृष्ण जब भी नहीं कर सकता है। हम लोग कहीं फंस जाए तो बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, शायद भगवान कल्याण कर दें। हरिण को पशुओं में वह स्मृति नहीं होती है। हाँ, यदि पूर्व जन्म में भजन किया होगा जैसे गजेंद्र जी किए थे तो उनकी स्मृति आ गई भगवान का स्मरण करने में, और बेचारा हरिण स्मरण भी नहीं कर सकता है। लेकिन करुणावश यदि बादल घना घनत्वम बिना भेदभाव के केवल करुणा करने के लिए वह जल का वर्षा करता है, तो गुरु का पहला कर्तव्य है अनपेक्षा, बिना अपेक्षा के। कोई अपेक्षा नहीं है, प्रचार करता है, जीव का कल्याण करता है अनपेक्षा, बिना अपेक्षा के। रिटर्न की भावना उसमें न हो, जैसे बादल कारुण्य करुणा करके घना घनत्वम उज्जल का वर्षा करे। और एक ही जगह नहीं, सर्वत्र जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। नहीं कि आश्रम में बैठ गया दस चेले लोग हैं खाना पीना व्यवस्था कर रहे हैं, वो गुरु नहीं। गुरु मतलब जो सर्वत्र जाकर के प्रचार करें। डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद। बुढ़ापे में लोग जाते हैं वृंदावन रिटायर होने के लिए, प्रभुपाद जी वृंदावन होकर कहां गए, अमेरिका गए प्रचार करने के लिए। ये है त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, करुणा परब, करुणा उनमें है। ऐसे गुरु को का हमें शरण ग्रहण करना चाहिए जो अपने सुख सुविधा को त्याग करके सब जगह प्रचार कार्य के लिए जो जाता है, जीवों को रेस्क्यू करने के लिए जो जाता है। एक गुण है गुरु का, वह हंस गुरु है। दूसरा है महाप्रभो कृतननी तगित वादितमादम मनसोरसेना रोमांचकम बास तरंग भांजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद। भगवान चैतन्य महाप्रभु आए देने के लिए। क्या देने के लिए आए हैं? वस्तु को देने के लिए आए जो अब तक से कोई नहीं दिया था। अनर्पित चरिम चिरात करुणया उत्तीर्णा कलौ समर्पय तुम सम्मतोज्ज्वलम रसाम सुभक्ति श्रिय उन्नत उज्ज्वल रस। उन्नत उज्ज्वल रस देने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। उसके पहले जब कृष्ण के रूप में थे तो कृष्ण केवल लिए हैं, दिए नहीं हैं, दिए बड़ा कम है, कृष्ण बड़े कंजूस हैं, देते नहीं हैं, वो केवल लेते हैं, क्योंकि वो काले हैं ना, तो काला का गुण है केवल लेना है, काला का गुण है लेना। ये छाता है, छाता लगाओ तो सूर्य की रोशनी को ऑब्जर्व करेगा। आजकल गर्मी का दिन चश्मा लोग लगाते हैं, क्यों? कि लाइट को ऑब्जर्व करेगा। तो काला का काम है ऑब्जर्व करना, लेना। देखो पूरे भगवत गीता में कृष्ण मांगते ही हैं, एक बार तो कह दिए कि यद करोसि यद स्नासि यद जिहोसि रास यद यद तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुषम। जो कुछ भी करो, बड़ा कंडीशनल कह देते, जो कुछ भी करो मुझे अर्पण करो। लेकिन वो देखे कि सब लोग अर्पण नहीं करेंगे तो कहते हैं कोई बात नहीं, अरे फल दे दोगे उससे भी काम अपना चल जाएगा, है ना, पानी दोगे उससे भी काम चल जाएगा, अरे पत्ता भी कुछ दो, कुछ दो। जब लोग नहीं दे तो भगवान बड़े गुस्सा किए और कहे कि सब कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो मानो कोई पूछे कि सब दे देंगे तो अपने लिए क्या रहेगा, भगवान का सा चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। तो कृष्ण लेते हैं, लेकिन राधा रानी क्या करती हैं? वो देती हैं, क्योंकि राधा रानी कैसी हैं? वो काली नहीं है ना, कैसी हैं? गोरी है। सूर्य जो है काला वस्तु इसे ऑब्जर्व करता है, लेकिन व्हाइट वस्तु क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगा व्हाइट वस्तु। तो राधा रानी तब तक कांचन है, व्हाइट है, तो रिफ्लेक्ट करती है। तो अंदर से कृष्ण और बाहर से राधा बन करके चैतन्य महाप्रभु आए, देने के लिए आए, देने के लिए आए। इसीलिए तो रूप गोस्वामी उसके बाद पहचान गए और कहे बस बस, नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति से नमः। आप देने के लिए आए हैं, कौन होगा उनसे महाबदान्य, कौन होगा? चैतन्य महाप्रभु के समान कोई अवतार अभी तक नहीं हुआ है, महाबदान्य। अनकंडीशनली देने के लिए आए, अनकंडीशनली देने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु। इनका स्वभाव है कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगोपांगास पार्षद जगई संकीर्तना प्रायी जयंती ही सुमेशा। कृष्ण का वर्णन करने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु। तो उन महाप्रभु के कीर्तन रस में जिसकी कृष्ण रस में जिसकी तृष्णा हो, कीर्तन रस में ही जो आनंद की प्राप्ति करता हो, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत, नाचने में और गाने में भक्तों को नाचना चाहिए। चैतन्य मंगल में एक श्लोक है कि जो चैतन्य महाप्रभु पर विजय प्राप्त करना है, ये तुम क्या कर रहे हो, तो जाकर के जगा दो उसको। चैतन्य महाप्रभु को लुभाना है तब हमें चाहिए नाचना और गाना। जब भक्त नाचते और गाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु दौड़ दौड़ वहां पर आ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल देन है, अन्य कहीं पर देन नहीं है। कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, जवान हो, सब लोग नाच गा सकते हैं, बच्चा हो, सब लोग नाच गा। प्रभुपाद जी देखिए नाच रहे हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेगी। ये देन किसी ने नहीं दिया, महाप्रभु दिए, सबको दिए। झारखंड वंश जब जा रहे थे तो उन हिंसक पशुओं को भी नचाए यह नाम दे करके। तो महाप्रभु कीर्तन मित गीत वादित्यमानम मनसोर सेना रोमांचकम बास तरंग भांजो, जिसमें रोमांच कंपन अश्रु अस्सात्विक विकार जिसमें आता हो वह व्यक्ति हंस है, और वैसे गुरु का चरण ग्रहण करना चाहिए। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, तो पहला जो श्लोक है गुरु के करुणा का, दो जो श्लोक है वो गुरु के कनेक्शन का, एक तो महाप्रभु का और दूसरा स्वयं गुरु जो एक्सपर्ट है श्री विग्रहारा, श्री विग्रह की आराधना करने पे स्वयं करता हो। श्रृंगार मंदिर मार्जना, श्रृंगार करना, मंदिर मार्जन करना, वैसे गुरु का श्रवण का चतुर्विद श्री भगवत प्रसाद इत्यादि। श्री राधिका माधव जोर पार, जो राधिका राधा और माधव, श्री राधिका माधव जोर पारम माधुर्य लीला गुणरूप नाम नहीं प्रतिक्षण अस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। या आस्वादन करता हूं नित्य प्रतिदिन राधा माधव के लीलाओं का, जो चिंतन करता हो, जो गुणगान करता हो, जो प्रचार करता हो, ऐसे गुरु का हमें शरण ग्रहण करना चाहिए। निकुंज जोनि व्रत कई सिद्धई, निकुंज जोनि एक होता है कुंज और एक होता है निकुंज। कृष्ण जिसमें निवास करते हैं वह कहलाता है कुंज, और राधा रानी जिसमें रहती हैं वह कहलाता है निकुंज। तो निकुंज योनि मतलब राधा कृष्ण के मिलन, जहां निकुंज में राधा कृष्ण मिल रहे हैं। निकुंज योनि रतिकेली सिद्धई, रतिकेली प्रणय जब कर रहे हैं वहां पर उनका सेवा करना। निकुंज योनि रतिकेली सिद्धई त्रिपिक्षण तत्रा अति दक्ष, जो बड़ा एक्सपर्ट है राधा कृष्ण के निकुंज जोनी जो लीला है उसमें सहयोग करने में, वैसे गुरु का। और तब बाद का जो दो श्लोक है उन श्लोकों में प्राय वर्णन किया गया है, ऐसे गुरु को शास्त्र कहता है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्री। हरित्वेन विशेषण, हरि का विशेषण है हरित्वेन, जिसमें हरि का गुण हो, जो हरि के समान हो। हरि नहीं है वो, कैसा है? हरि के समान है। हरि होना और हरि के समान होने में अंतर है। जैसे लोहा है, लोहा को आप आग में रख दो तो कुछ समय के बाद वह लोहा लोहा नहीं रह जाएगा, वह आग का रूप धारण कर लेगा। तो उसे आप लोहा नहीं कह सकते हो, लेकिन साथ में उसको आग भी नहीं कह सकते हो, कि जब तक से आग से संपर्क में है तब उसमें आग का गुण है, निकल गया तो फिर लोहा का लोहा, पुनः मुश्किल होगा वही हो जाएगा। तो इसीलिए साक्षात हरित्रेण उसमें हरि के सब गुण विद्यमान है। समस्त शास्त्र सर्वशास्त्र तो यह बात कहता है, लेकिन वह गुरु क्या कहता है? अरे सब झूठ बात है, हमें हरि गुण नहीं है। किंतु प्रभोर्य प्रियाय वतश्च, मैं तो प्रभु का एक प्रिय सेवक हूं बस। मैं उनका सेवक हूं बस। ऐसे गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए और तब आता है जस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो जस्या अप्रसादान नगति कुतोपी ध्यामस्तुमस्त सृष्टि संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो भगवत प्राप्ति करने का, भगवत कृपा प्राप्ति करने का साधन है गुरु का कृपा प्राप्त करना। गुरु स्वीकारना सबके लिए जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु कई एक प्रकार के हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। प्रभुपाद जी कहते हैं बोथ आर इक्वल एंड आइडेंटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा। भगवान के ही विस्तार हैं दोनों, चाहे शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो, केवल फंक्शन अलग अलग है। दीक्षा गुरु जो दीक्षा देता है, इसका मतलब नहीं वो शिक्षा नहीं दे सकता है, जो प्राय देखा जाता है जो शिक्षा देता है वही दीक्षा गुरु होता है। शिक्षा इंपॉर्टेंट है, हमें गुरु स्वीकारना चाहिए। ब्रांड भ्रमते भवन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच, गुरु को स्वीकारना चाहिए। लेकिन किसी के बाहरी वस्तु को देख करके नहीं, किसी के कहने से नहीं। बहुत कई भक्त लोग कॉन्फेसिंग करते हैं, अरे हमारे गुरु जी अच्छे हैं चलो दीक्षा ले लो उनसे। किसी से कहने से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। गुरु का मतलब है मीडिया, एक चश्मा है ना, तो अलग अलग प्रकार का चश्मा है। किसी में हमारा यह प्लस फाइव है, किसी का प्लस टेन है, प्लस ट्वेंटी है। चश्मा के दुकान पर अलग चश्मे हैं, तो वही चश्मा जिसे हम देख सकें। गुरु का मतलब बाया मीडिया, ट्रांसपेरेंट बाया मीडिया, जिसे हम देख सकें। किसको देखना है? भगवान को। नहीं कोई कहता रहे चश्मा बड़ा अच्छा है फर्स्ट क्लास का, देखो इसका बहुत अच्छा नाम है, यही तुम ले लो। और मान लीजिए उसको खरीद लेते हैं लेकिन पहने में कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, तो क्या फायदा है चश्मा लेने से? अरे वो चश्मा लो जिसे कुछ दिखाई पड़े। तो गुरु का मतलब है वाया मीडिया। नहीं तो कभी मैं देखता हूं भक्त लोग, अरे यार उसके कहने से मैंने दीक्षा ले लिया, बड़ा गड़बड़ कर दिया, हमको उनसे नहीं उनसे दीक्षा लेना चाहिए था, वो बाद पछताते हैं। ऐसे कभी गलती मत करना। सुनो, असली गुरु तो कृष्ण है चित्त गुरु के रूप में, और उनके प्रतिनिधि बाहर हैं, तो आपको डायरेक्ट करेंगे और उनके डायरेक्शन से। हां, अन्य वैष्णवों से सहयोग करेंगे, किसी को कॉन्वेसिंग नहीं करना चाहिए, किसी कहने से नहीं। कृष्ण सबके हृदय में है। तो गुरु स्वीकार करो। कैसा गुरु? हंसे गुरु मई भक्त्या अनुभूत्या। मई भक्त्या अनुभूत्या, भक्त्या मतलब भक्ति पूर्वक, अनुभूत्या का मतलब होता है तत्परता पूर्वक। भक्ति कैसे करनी चाहिए? तत्परता पूर्वक। ये नहीं कि भजन में आलसी और भोजन में होशियार, ऐसा भगत नहीं बनना चाहिए। तीन प्रकार के शिष्य होते हैं। एक कहलाता है गुरु सेवी, एक कहलाता है गुरु भोगी, और तीसरा कहलाता है गुरु त्यागी। गुरु सेवी वह है जो गुरु के मनस्थिति को समझता है बिना कहे, या जो एक बार कह दिया गया वो कर रहा है, वो गुरु से भी है। और गुरु भोगी, गुरु जी प्रसाद उतना नहीं खाते हैं लेकिन चलो हम पुजारी डिपार्टमेंट में पूरा थाली भर करके लाते हैं, गुरु जी ने अपने को मिलेगा ना, वो गुरु भोगी लोग हैं, गुरु के नाम पर भोगते हैं। और गुरु त्यागी, जो लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए गुरु ग्रहण कर लिए हैं, इस्कान भाई रहना है तो गुरु स्वीकार करना पड़ेगा इंद्रिय तृप्ति के लिए। जैसे मैं प्राय कहा करता हूं कि एक बार एक गुरु जी थे, अपने चेलों को बुलाया कि बेटा देखो अभी भगवान के लिए भोग बनाने का समय हो गया है, जाओ तुम लोग थोड़ा जंगल से लकड़ी लेकर के आओ। तो चूल्हे ने कहा कि गुरु जी अभी दो चार माला जप करना बाकी रह गया है ना जगन्नाथ, दो चार माला जप करना बाकी रह गया है। गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा तू लोग जप करो, मैं जा रहा हूं लकड़ी लेकर के आ रहा हूं। गुरु जी लकड़ी लेकर के आए और समय आया भोग बनाने का। गुरु जी कहे कि आओ बेटा तुम थोड़ा सहयोग करो। तो चेला कहते हैं गुरु जी बस दो तीन माला और बाकी रह गया है, नहीं पानी लाने पानी लाओ। कहा दो तीन माला बाकी रह गया है। कहा ठीक है जब वो पानी भी लाए गुरु जी। अब भोजन बनाने का समय आया फिर भी वही बात के एक दो माला और बाकी रह गया है। तो गुरु जी ने कहा ठीक है जप करो। जब गुरु जी भोजन बना लिए भगवान को भोग लगा लिए तो कहे कि बेटा प्रसाद खाने आ जाओ। तो चेले ने कहा हां गुरु जी आपका तीन आज्ञा उल्लंघन कर दिए हैं, वो चौथा नहीं करेंगे। तो ऐसा चेला मत बनो, ये गुरु त्यागी कहलाते हैं। कैसा भक्त बनो, यहां पर भगवान सब कहते हैं भक्त्या अनुवृत्त्या। अनुवृत्त्या मतलब कमर कस करके भजन करने वाला, चाहे मंगला आरती हो, चाहे क्लास हो, चाहे गुरु पूजा हो, चाहे कोई सेवा हो, जो तत्पर रहता है तन मन धन से भगवान का सेवा करने के लिए। निष्कपट कृता अनुवृत्त्यात्मकम सेवया, निष्कपट भाव से जो सेवा में तत्पर रहता है वैसा भक्त अनुवृत्तिया, अनुवृत्तिया फॉलोअर कहलाता है। वह फॉलोअर, वो भक्ति का फॉलोअर है तत्परता पूर्वक। वितृष्णया, ये तीसरा गुण है वितृष्णया। वितृष्णया का दो अर्थ होता है, विगत तृष्णा और विशेष तृष्णा, दोनों अर्थ होगा। संसारिक वस्तुओं की जिसमें कामना न हो, विगत खत्म हो गया तृष्णा, जिसने तृष्णा को त्याग कर दिया हो, विहाय कामान सर्वान पुमान चरत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकारम सहमी शांति मदिगच्छति। तृष्णा अशांति का कारण है, दुख का कारण है। तृष्णा को त्याग करके भजन करना चाहिए, तृष्णा को त्याग देना चाहिए गुरु के सेवा से। और विशेष तृष्णा, भगवान के भजन में विशेष तृष्णा होना चाहिए, यह अभी साधन है। तृष्णा को त्याग दें, संसारिक तृष्णा को त्याग दें। संसारिक तृष्णा मतलब हाय हाय और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और विशेष तृष्णा और हम भगवान का सेवा करें और भगवान का नाम ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये है वितृष्णा। इसका बहुत एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है लेकिन घड़ी इतना रुक नहीं रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तृष्णा से परे होकर के भक्ति करनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं द्वंद्व तितिक्षया। भगवान भगवत गीता में कहते हैं इसको, इसके उस समय कौन श्लोक जानता है? हाँ जोर से बोलो, खड़ा हो जाओ, बोलो जोर से। हाँ वेरी गुड, चलो कुछ से याद किया। मात्रा स्पष्ट कौंतेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यं तां तिच्छस्व भारत। वही बात यहां पर, सहन करो जाड़ा गर्मी बरसात। यहां भगवान कह रहे हैं कि मुक्ति पाना है तो सहन करो। यहां पर टेम्पल कमांडर थोड़ा बोल दिया तो कह रहे हमको कौन बोल दिया, हमको कौन होता है बोलने वाला, हो गया तो कहां मुक्ति होगी, सहन करना पड़ेगा।
ये जो बाहर का शारीरिक मानसिक ये सब कष्ट हैं, इन कष्टों को सहन करना पड़ेगा। ये इंद्रियों के बाय सेंस परसेप्शन, ये इंद्रियों के द्वारा ये सुख और दुख देखे जाते हैं। किसी व्यक्ति को मिर्चा दे दीजिए खाने के लिए तो उसकी नानी मर जाएगी, वो तीखा लगता है, और कितने अच्छे है ना वो मिर्चा बड़ा रसगुल्ला के समान लगता है कुछ लोगों को, है ऐसे लोग हैं ना मिर्चा खाने वाले, हरा हरा मिर्चा, लाल नहीं हरा मिर्चा, तो एक ही वस्तु है लेकिन अलग अलग भाव। तो संसार द्वंद्वात्मक संसार है, इस द्वंद्वात्मक संसार में विभिन्न प्रकार के दुख होंगे, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, शारीरिक सुख मानसिक सुख, ये द्वंद्व हैं। जैसे फुटबॉल होता है ना, उधर से किक किया इधर गया, इधर से किक किया इधर गया, ये है द्वंद्व। तो हम लोग वहीं पर हैं, माया हमको मारती कभी इधर कभी इधर, कभी सुख तरफ लाती है कभी दुख तरफ लाती है, इसको सहन करना चाहिए। जो सहता है उसको लहता है, हमारे यहां भोजपुरी में कहते हैं, बिहार में जो सहेगा उसको लहेगा, जो सहेगा उसको प्राप्त होगा, है? नहीं सहेगा। भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि संसार का द्वंद्व जो है, उसमें इंद्रिय तृप्ति सेक्स डिजायर के लिए कहते हैं, जैसे कभी कभी खुजली हो जाता है ना, है वो खुद खुजलाएगा अच्छा लगता है उस समय तो, लेकिन बाद में बड़ा घाव हो जाएगा, लेकिन वो सह जाएगा ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही संसार में विभिन्न प्रकार की अपोजिट डिजायर्स आते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, जो सह जाएगा। वास्तव में दुख और सुख जो है क्षण भंगुर है, बहुत बहुत कम समय का है। जैसे जाड़ा का दिन है और नहाना हो ठंडा पानी में, तो नहाने से पहले लगता है कि मर जाएंगे, नहा नहीं पाएंगे ठंडा पानी में, लेकिन एक जग डाल दिया बस चंगा हो गया, फिर दो चार पांच और डाला खत्म हो गया। तो जो एक जग डालना है पहला वाला सबसे तकलीफ उसी में है। जैसे किसी को इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है ना, इंजेक्शन वाले वो डॉक्टर इंजेक्शन लाता है तो आंख लोग बंद कर लेते हैं, वो ऐसे ही पता ही नहीं चलता है, तो उसे पहले थोड़ा डर लगता है, बाद में ठीक हो गया चंगा हो गया। तो कितना सहन करना है, थोड़ा बहुत नगर या मात्र सहन करना है, तितिक्षव इसको सहन करना है, तितिक्षया च। और आध्यात्मिक दुख भी आते हैं, ये तो शारीरिक दुख है, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला दुख है, और च मतलब आध्यात्मिक दुख भी आते हैं, नेम फेम ग्लोरी ये भी दुखे है। साधु बन गया तो हजार माला लोग डालेंगे, सौ लोग प्रणाम करने आ जाएंगे, पूजा प्रतिष्ठा ये सब आता है। च सर्वत्र जंतु व्यसना अवगत्या, संसार में सब जगह दुख ही दुख है, चाहे स्वर्ग का राजा इंद्र बनो, चाहे पृथ्वी लोक पर रहो, चाहे चींटी बनो, कहीं पर जाओ दुख है। जाकर इंद्र से पूछिए कितना दुख है उसको, बेचारा खा भी नहीं पाता है, सो भी नहीं पाता है, कोई यहां पर तपस्या करने लगे तो उसको हेडक हो जाता है इंद्र को। कहीं भी जाए पुनरअपि जन्म, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चल रहा है। तो इस बात को समझना चाहिए कि सब जगह दुख ही दुख है। मैं आगे बढ़ा रहा हूं फटाफट, अभी दो तीन और है, समय तो है नहीं। जिज्ञासया है और तत्व जिज्ञासा का ब्रह्मति तत्तत्व जिज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व का ज्ञान, जिज्ञासा करना। यहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए हैं ये जिज्ञा तत्व विज्ञानार्थम स्वगुरु एवाभिगच्छेत, जाकर के वहां पर जिज्ञासा करनी चाहिए, गुरु के शरण में जाओ और वहां जाकर जिज्ञासा करो। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न से होया,
जिज्ञासा करना चाहिए तत्व के संबंध में, संसार क्या है, भगवान क्या है, आत्मा क्या है, आत्म अनात्म और परमात्म तीनों का जिज्ञासा करो। और तप तपस्या के द्वारा विभिन्न प्रकार का तप है, ये मंगला आरती यानी कम तप थोड़े हैं, बहुत बड़ा तप है। कितना फर्स्ट क्लास नींद आता है आजकल गर्मी के दिन में, सुबह सुबह ठंडा लगता है, जरा गर्मी में कितना अच्छा लगता है, सोना बड़ा अच्छा लगता है। कोई गहरा नींद में सो गया हो और उसके सामने कोई 56 भोग भी लेकर के आ जाए तो कहेगा सोलह में बाद में खाऊंगा, भूख भी नहीं लगेगी जब गहरा नींद में सोया हो। तो मंगला आरती आना तपस्या है, सोलह माला जप करना भी तपस्या है। दिन भर बात कर लेंगे लेकिन माला नहीं आगे बढ़ेगा, कम तपस्या थोड़े है। कीर्तन में नाचना तपस्या है, कोई कुछ कह दे सहन करना तपस्या है, विभिन्न प्रकार का तप, भगवत गीता सत्र में ध्यान बताया गया है, वाणी का तपस्या, शरीर का तपस्या, विभिन्न प्रकार की तपस्या है। उसमें दिव्य तपस्या है, सर तपस्या भी अलग अलग प्रकार के हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्गुणी। तो तपा का मतलब है तपो दिव्यम पुत्र का जीन सत्वम, पहले बता चुके हैं ना, तपा का मतलब दिव्य तपस्या, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और इहान वृत्तिया इस भौतिक संसार में काम्य कर्म त्यागेशु यहां निवृत्त्या, सकाम कर्मों का परित्याग करना, चाहे सकाम कर्म हो चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, दोनों बंधन के कारण है। एक से पाप कर्म से दुख प्राप्त होगा और पुण्य कर्म से सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन दोनों बंधन के कारण है। प्रभुपाद जी कहते हैं हीरा चोर या खीरा चोर, दोनों चोर हैं, एक छोटा चोरी करता है एक बड़ा चोरी करता है, चाहे ड्राई स्टूल और वेट स्टूल दोनों स्टूल है। तो कोई कर्म है चाहे सकाम कर्म है या चाहे पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, कर्म है कर्म अकर्म विकर्म, कर्म है चाहे विकर्म है, दोनों पाप के कारण हैं। तो इसे त्याग देना चाहिए, यानी कर्म फल को त्याग दें, कर्म फल को भगवान को अर्पण करें। तो ये 8 प्रकार के साधन बताए जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। हृदय ग्रंथि शिथिल होकर के खुल सकती है इन 8 साधनों से। तो संक्षिप्त में मैं आप लोगों को इन 8 का वर्णन किया, और आगे जो हैं बाकी, यानी और कितने बाकी रह गए, 17 ना, तो 17 आप लोग सुन लेना कल परसों में 2 दिन में, ठीक है। तो यहीं पर मैं कथा को विराम करूंगा कि 9:15 बज गया। और कोई प्रश्न किसी को, कमेंट महाराज माइक दीजिए, माइक वाला कहां गया, जगन्नाथ बेचैन हो गया, उसे इतना भूख लग गई है कहीं बैठ नहीं पा रहा, इधर उधर उधर, बैठो बैठो।
विषय का बड़ा अच्छा विश्लेषण किया, धन्यवाद।
प्रभु जी, इन द कंपोजिशन ऑफ सटल बॉडी ओनली फॉल्स ईगो intelligence and mind comes, and mind can be divided into conscious mind and subconscious mind, but there is no mention of hriday, heart, in the subtle body. So should we take subconscious mind as the heart, the hriday granthi, is it so?
Bataiye Maharaj.
You can take like that.
और कोई प्रश्न,
हरे कृष्ण, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन हंस एंड परमहंस?
वेरी गुड. परमहंस गति जो है उसमें हंस अपने जीविका के लिए कुछ कार्य करता है हंस गति में, और परमहंस गति में कुछ भी नहीं. अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम. अजगर करे न चाकरी, अजगर वो कहीं कोई कुछ काम नहीं, अपना पड़ा रहता है, जो भी आता है प्राप्त कर लेता है, कहीं कुछ करने नहीं आता है. ऐसे माधवेंद्रपुरी वो परमहंस गति को थे, वो कभी अपने मजदूरी करने नहीं गए, वो उदासीन थे, उदासीन. परमहंस उदासीन होते हैं, लेकिन हंस लोग अपना व्यवस्था कर लेते हैं, कभी मधुकरी कर लेते हैं, भले नौकरी नहीं करते हैं मधुकरी कर लेते हैं, लेकिन परमहंस नहीं. परमहंस उत्तम अधिकारी हैं और हंस मध्यम अधिकारी, इस रूप में समझ सकते हैं.
ये चार प्रकार के सन्यासी में परिव्रजकाचार्य भी बताया गया है ना, मुझे याद.
परमहंस
परिव्रजकाचार्य नहीं
है,
कुटीच बहुधा परिव्रजकाचार्य एंड परमहंस.
वो हंस प्रवज्ञाधिनायक ही होते हैं. जब परमहंस आ जाते हैं नीचे प्रचार करने के लिए तो परिव्रज के कहलाते हैं.
ओके.
परमहंस इनके ना जाते हैं नीचे. वो है ना रमेश कंध में कि उत्तम अधिकारी कौन है, मध्यम अधिकारी जो भगवान से प्रेम रखे, जीवों पर करुणा करे है? तो उसके लिए आना पड़ता है. नामे रति जीव दया वैष्णव सेवान. और कोई प्रश्न? हाँ, तुम्हारा उत्तर असी नहीं देंगे, मेरे पास उत्तर तुम्हारा नहीं होता, लेकिन ठीक है कुछ लोग हरिदास है. हाँ, उसका उत्तर अगर असीम दे सकते हैं.
हरे कृष्णा. चक्षुदान दिल जाई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो प्रत्येक दिन हमें ऐसे प्रभुपाद के सामने गाते थे.
गाते थे, गाते हैं,
गाते हैं. लेकिन जब भगवत गीता प्रचार करने के लिए मैं गए थे दिसंबर महीने को, और बाहर भक्त ने बोला है ये क्या है, मतलब भगवत ग्रंथ है, और ले सकते ना, ये कौन सा ग्रंथ है, मतलब भगवान का ग्रंथ है ना, भगवान है, बोले है ना, आप देखा है ना, नहीं देखा है ना, देखने के लिए क्या दिव्य चक्षु चाहिए ना, दिव्य चक्षु आपका पास है, अब तो दो चक्षु है, फिर दिव्य चक्षु कौन है, और दिव्य चक्षु प्राचार्य में बताइए दिव्य चक्षु कौन है, किसका मिलेगा है.
ठीक है, ये आंख के ऊपर बाल है ना.
हाँ,
आंख के ऊपर बाल है ना, इसे ब्राउनी कहते हैं, क्या बोलते हैं, आईब्रो, आईब्रो, आईब्रो है ना, ये दिखाई पड़ता है आंख से, आंख के बिल्कुल नजदीक है, दिखाई पड़ता है, बोलो हाँ या ना, बोलो ना,
नहीं
देखे परे है,
नहीं बोले,
नहीं दिखाई पड़ता है ना,
नहीं
तो कैसे देखोगे इसको,
मिरर से मिरर, मिरर
हाँ, तो मिरर दिव्य चक्षु है, वो मिरर दिव्य चक्षु है, इसको देखने के लिए, इसको देखने के लिए वो दिव्य चक्षु है. मत बोलना कि अभी जाने की जरूरत नहीं, मिरर मिल गया हो गया, वो बात नहीं है, मैं उदाहरण दिया, ये ब्रह्मी को देखने के लिए दिव्य चक्षु मिरर है, वैसे ही भगवान को देखने के लिए दिव्य चक्षु जो है वो गुरु है.
धन्यवाद.
और कोई प्रश्न? आज तो अच्छा प्रश्न किया, नहीं तो डेली प्रश्न है, मंदिर में हो रहा है, मंदिर में हो रहा है, मैं थक जाता हूं तो देखकर के. चलो जगन्नाथ, कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण. थैंक यू गुरुजी. गुरुजी जैसे आपने बताया कि हमें टॉयलेट करना है, जो आपने एग्जांपल दिया था, जो पहला जब हम सर्दी में नहाते हैं तो पहला जो तो प्रैक्टिकल जो सिचुएशन होता है तो बहुत ही मुश्किल होता है वो, तो उसके लिए कैसे, मतलब प्रैक्टिकल हम लोग कुछ किसको अगर बोल भी देता तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर.
प्रभु तैयारी करो, मरते समय मृत्यु का उतना ही दुख होता है, जब मरेंगे ना उतना ही देर उधर होता है, लेकिन हम कम से कम से डर रहे हैं, अभी से डर रहे हैं, कोई मरना नहीं चाहता है, अभी से डर रहे हैं ना, कोई नहीं मरना चाहता है, दुख एक सेकेंड का होगा. देयरफॉर यू हैव टू लर्न आर्ट ऑफ डाइंग, अभी से सीखो,
प्रैक्टिस करना शुरू करो, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम। और जो सहन करता है, स्नान करता है, वो सहना जरूर, डर गया तो काम नहीं होगा, सहन करना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है, सहन करना ही पड़ेगा, मृत्यु असंभावी है, सहन करना ही पड़ेगा। यहां पर कहा तितिक्षया, सहन करना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो प्रैक्टिस करें, पहले थोड़ा दुख होता है सहन करें, थोड़ा और बड़ा होगा सहन करें, थोड़ा और बड़ा होगा सहन करें। जी गोस्वामी कहते हैं ये दुख है ना, एक दुख आया सहन करो आगे बढ़ो, दूसरा दुख आया सहन करो आगे बढ़ो, ऐसे ऐसे करते करते क्या करोगे, वो श्रेणी बन जाएगा, वो दुख है ना, दुख का श्रेणी, पैर ऊपर रखते जाओ ऊपर रखते जाओ ऊपर रखते जाओ, और एक बार भगवान के धाम में चले जाओगे। मैं उदाहरण देता हूं, सुन लो भी, जगन्नाथ क्षमा करना है, थोड़ा उनको बताता हूं। एक धोबी था, धोबी के पास एक गद्दा था, वो गद्दा बुढ़ा था, और धोबी के पास थोड़ा खेत था, उसमें एक कुआं था, और कुआं सूख गया था। तो एक दिन किसी प्रकार से वो गद्दा, बुढ़ा गद्दा काम नहीं करता था, बुढ़ा हो गया था, उस कुएं में गिर पड़ा और लगा चिल्लाने। तो धोबी सोचा कि अच्छा हो गया, वो गद्दा नीचे गिर गया है, है? कुछ समय के बाद गद्दा चुप हो गया। तो धोबी सोचा, कह रहे मैं तो सोच ही रहा था कुआं बंद करने के लिए, ताकि थोड़ा जमीन और मिल जाए खेती करने के लिए, अब गद्दा गिर गया, उसने मर गया, लगता मर गया। वो गांव वालों को बुलाया, सब गांव वालों को बुलाया, तो गांव वाले अपना फावड़ा वगैरह सब लेकर के आए, और सबके सब लोग ऊपर से मिट्टी डालने लगे। वो कह दिया गद्दा मर गया, उसको अंदर ही उसको बैरी करना है, सब लोग मिट्टी डालने लगे। तो गद्दा सोच रहा है, अरे मैं तो इन लोगों को हेल्प के लिए चिल्लाया, ये तो मुझको मारना चाहते हैं। ऊपर जो मिट्टी डालते थे वो शरीर हिला लेता था, जब शरीर हिला लिया सब मिट्टी नीचे गिर गया, फिर मिट्टी डाले शरीर हिला लिया फिर नीचे मिट्टी गिर गया, फिर मिट्टी डाले शरीर हिला लिया, ऐसे ऐसे क्या हो गया, कुआं तो भर गया लेकिन गद्दा ऊपर आ गया। तो ऐसे ही संसार में दुख आएगा, हिलाओ शरीर को, सहन करो, फिर दुख नीचे और अपने ऊपर, ठीक है। और कोई प्रश्न, जगन्नाथ की परेशान कर रहे हो, उसका प्रश्न है, लास्ट में प्रश्न है उधर, ओके लास्ट क्वेश्चन, नो मोर।
हरे कृष्ण जी, आपने कहा कि किसी भी लोक में जाओ तो जन्म मृत्यु जन्म व्याधि चलता रहता है।
बिल्कुल, मैंने कहा यहाँ शास्त्र में कहा गया है, मैं तो कहने वाला हूँ,
ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि कृष्णा का टेंपल छोड़ के अगर किसी देवी देवता के मंदिर में जाएगा तो क्या हमें पुण्य मिलता है क्या?
क्या बोले, मैं समझा नहीं
एक्चुअली।
तो उसका संबंध उससे कहाँ है?
नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कृष्णा का टेंपल छोड़ के, जैसे भगवान तो एक ही है ना, तो किसी दूसरा जैसे शिव जी है ब्रह्मा जी है।
मैं अभी जोधपुर था तो एक घर में प्रोग्राम था, तो वहां पर ऐसे ही बात हो रही थी, तो किसी ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं कृष्ण का तो शिव जी का पूजा करना काली जी का पूजा करके खराब है क्या? तो मैं कहा कि आजकल लोग अपने घर में एक मंदिर बनाते हैं और उसको किराना स्टोर बना लेते हैं। किराना स्टोर जानते हो ना, सब प्रकार के सामान उसमें होते हैं, हैं? साबुन भी होगा, तेल भी होगा, सोडा सब कुछ होगा, बिस्कुट भी होगा, सब कुछ होगा, किराना स्टोर। तो लोग अपने घर का जो मंदिर बनाते हैं ना, वो किराना स्टोर बना लिए हैं, उसमें शिव जी भी हैं, काली जी भी हैं, दुर्गा जी हैं, सब उसमें रखे हैं, किराना स्टोर के सामान। अरे भजन करना है तो एक का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, सब हो गया अपने आप, और किसी की जरूरत नहीं है। आराध्यो भगवान भजे तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काजित पासना ब्रजवधू ब्रगेण वा कल्पिता। नंद बाबा नहीं, रघुपति उपाध्याय एक प्रार्थना किए हैं, स्मृति मितरे स्मृति परे भारत भजन्ति भवभीता अहम यम नंदम वंदे यस्यालिंग परम ब्रह्मा। कहते हैं नंद बाबा के आंगन को प्रणाम करता हूं जिसे परब्रह्म ने लीला किया, खेला। तो कृष्ण और कृष्ण से संबंधित वस्तुओं को ही हम ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, अन्य किसी की जरूरत नहीं। 100 रुपए का नोट है ना, उसमें 50, 20, 10, 5, 2, 1 सब ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो 100 रुपया का नोट कृष्ण के मंदिर में आ गया, सब जाएगा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कभी गया कृष्ण जी का मंदिर बगल में, पता नहीं मैं कैलाश गया था, मैं कभी जाता नहीं, क्या जरूरत है। हमारे भक्त लोग शिवरात्रि को मोटी मारने जाते हैं, हम कभी नहीं जाते हैं, क्या जरूरत है। कृष्ण के पास आ गया, सब आ गया, समुद्र में है तो फिर कुआं खुदाने की जरूरत क्या है। जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।